44 कहानी एक सीधा दो उल्टे। लेखिका लता शर्मा। चर्चित कहानीकार लता शर्मा की यह कहानी स्त्री पुरुष संबंधों को कला के संदर्भ में व्यापक स्पेस देते हुए तात्कालिक तौर पर बनते रिश्तों को पुनर्परिभाषित करते हुए पाठकों की संवेदना को झिझोड़ती है। प्रगतिशील कलाकारों की भीतरी दुनिया की सीवन उधेड़ती लेखिका संशयों में फंसे पात्रों की अंतर्दृष्टि को बिल्कुल नए अंदाज में उकेरती चलती है। संबंधों के इस कोण पर अंतर्भूत सवाल बेहद प्रासंगिक और इतने जरूरी हैं कि वे हमारे भीतर देर तक फड़फड़ाते रहते हैं। मैं बहुत डरते डरते उनसे मिलने गई थी। डरती क्यों ना, अपने चित्रों की फाइल हाथ में लिए प्रसिद्ध चित्रकारों की कला कक्ष में प्रतीक्षारत बैठे बैठे देह में दीमक लगने की नौबत आ गई थी। जो इक्का दुक्का कुछ समय देने को तैयार होते, उनके रूखे कठोर वचन पत्थरों की तरह लगते और चोट पहुंचाते। इस तरह छत विछत मानसिक मृत्यु की कगार पर थी। अचानक रियाज साहब का ध्यान आया। जब जब राजधानी आई हूँ, इतने इतने प्रसिद्ध चित्रकारों से मिली हूँ, तो उनसे भी मिल लूँ। ज्यादा से ज्यादा एक घाव और लगेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जो हुआ अकल्पनीय था। सेक्रेटरी फोन पर ठिल ठिल करती, हाँ नहीं न न अरे नहीं के बीच रुकी और अंगूठे से अंतरंग कक्ष की ओर संकेत दे बोली, जाइए। कमरे में कोई नहीं था। असमंजस में खड़ी रही। दाई तरफ एक और कमरा था, उसका पर्दा हटा। अपने हाथ पोंछते रियाज साहब अंदर आए और कोमल स्वर में बोले, तशरीफ रखिए, फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ। मारे घबराहट के कांप रही थी मैं। इस देश के महान चित्रकारों में से एक मेरे सामने बैठा है, कहाँ से शुरू करूँ, क्या कहूँ, कहिए क्या काम है मुझसे। जी जी मैंने चित्र, हकलाते हुए अपनी फाइल बढ़ाई, मैं चित्र बनाती हूँ, मैं कुछ। उन्होंने हाथ बढ़ाकर फाइल ले ली, छाती पर झूलते चश्मे को नाक पर बिठाया और चित्र देखने लगे। कई चित्र पत्रक पलटकर दोबारा देखे। ये तस्वीर बड़ी सुनी सुनी सी है जी। उन्होंने फाइल बंद कर मेरी तरफ देखा। पृष्ठ 45। इन तस्वीरों में कोई जिंदगी नहीं है, न कोई चिड़िया, न आदमी, न मछली, न घोड़ा। महज रंगों का खूबसूरत तिलिस्म है। हाथ सिर के पीछे ले जोरदार अंगड़ाई ली। अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ सीखा, कब से बना रही हैं। मैंने बताना शुरू किया। ये सब नहीं, ये तो बायोडाटा है, फाइल के पहले पन्ने पर है। अपने बारे में बताओ, किसकी तस्वीरें देख खुद आंकने की तमन्ना पैदा हुई, क्यों बनाई बनाती हो ये तस्वीरें। शायद ये पलायन है, शायद जुझारूपन। मेरे अंदर कोई गहरी तकलीफ है, कुछ है जो निरंतर चुभता है। सब कुछ बहुत अच्छा है, पर मेरी इच्छा होती है कहीं भाग जाऊं। कुछ है जो उमड़ता उफनता रहता है, अजीब पागलपन की स्थिति रहती है। रंग और ब्रश हाथ में लेने से कुछ संतुलन सा आ जाता है। जब चित्र बना लेती हूँ तो अच्छा लगता है, कुछ समय के लिए। तो बनाओ ना तस्वीरें, कौन रोकता है। कोई तुम्हारी तस्वीरें देखे, सराहे, खरीदे, ये अरमान क्यों है। कुछ क्षण चुप रही मैं। क्या कहती। उन्होंने फिर कुरेदा, बोलो, कोई क्यों देखे तस्वीरें, क्यों अपना वक्त जाया करे। नितांत निजी कार्यकलापों को छोड़ मनुष्य का हर काम क्या प्रदर्शन नहीं होता। सामान्य आदमी अकेले हंसता रोता तक नहीं, अपने सुख दुख में भी उसे किसी की उपस्थिति चाहिए। उसके हर कार्य के पीछे प्रदर्शन की अदम्य लालसा है। मैं सामान्य स्त्री हूँ, मैं चाहती हूँ, मैंने कुछ बनाया है, चाहती हूँ लोग देखें, अच्छा है या बुरा बताएं। ठीक है, बहुत बुरी है ये तस्वीरें, एकदम घटिया। लो बता दिया। अब चश्मा अब भी नाक पर टिका था, नजर मेरे अंदर तक उतर चीर फाड़ कर रही थी। कुछ क्षण चुप रही मैं। ये मजाक कर रहे हैं या गंभीर हैं, क्यों बुरे हैं, यह भी तो बताइए। बता तो दिया, बेहद खाली खाली से हैं, बेजान, ठंडे ठहरे हुए। उन्होंने फाइल मेरी ओर सरकाई। देखो, तस्वीरें रंगों से नहीं अपने एहसास से बनती हैं, शिद्दत से कुछ कर गुजरने की तमन्ना से बनती हैं। उन्होंने हाथ बढ़ाकर फाइल उठाई, खोलकर मेज पर रखी। एक चित्र पर कागज का रिबन लगा मेरी ओर बढ़ाई, जरा देखो इसे। मैंने देखा, सूनी सी सड़क धूप छांव से गुजरती जंगल में खो गई थी।
क्या तुम इस सड़क से कहीं जाना चाहोगी? यहाँ तो कोई ढाबा, कोई पान की दुकान तक नहीं है, कोई तितली, कोई चिड़िया और कौवा तक नहीं है, कहीं कोई जिंदा शय नहीं है। ऐसी तस्वीरें मुझे डराती हैं। लगता है एटम बम से सब कुछ तबाह हो जाने के बाद की दुनिया देख रहा हूँ। तुम्हें खुद कैसी लगती हैं ऐसी तस्वीरें, जो जो एक तरह से बंद हैं, कहीं कोई उम्मीद नहीं? मैंने फाइल ले ली और धीरे धीरे सारे चित्र एक बार फिर से देखे उस महान चित्रकार की दृष्टि से। बात सच थी, कोई क्यों देखे ये चित्र? ऐसे ही चित्र हजारों चित्रकार रोज बना रहे थे। प्रकाश और छाया की लुका छिपी, रेखाओं का बिखरना और सिमटना, रंगों का छितराव और समूहन, अधिक से अधिक सुंदर समूहन। बस, मैंने फाइल समेट ली। मैं फिर आऊंगी, जरूर। मैं तुरंत बाहर निकल आई। जब सड़क पर आंखें टैक्सी ढूंढ रही थीं तो ध्यान आया, अरे मैंने इस व्यक्ति को ध्यान से देखा ही नहीं। फोटो तो हजारों देखे थे, आज जब आमने सामने थे तब ध्यान से देखना था। कैसे लग रहे थे? मन के दर्पण में अखबारी चित्र थे और थी बेधक दृष्टि। नहीं नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? चित्रकार के पास तो कैमरे जैसी संवेदना होनी चाहिए। कहीं न कहीं समग्र चित्र अंकित और संग्रहित होना चाहिए। हाँ है। धीरे धीरे चित्र उभरा, औसत से दबता कद, भीड़ हो तो दिखाई ही न दे, दुबला पतला सीख सलाई सा बदन, कुर्ते के खुले गले से लोमहीन छाती दिख रही थी, खासा सांवला रंग, काला ही कह लीजिए, आंखें जरूर बड़ी बड़ी और खूबसूरत, अद्भुत सम्मोहक शक्ति संपन्न दृष्टि। अंग्रेजी का शब्द GNOME उन्हें अच्छी तरह व्यक्त करता है। हाथों की उंगलियां लंबी और पतली, बातें करते करते अक्सर हाथों की दसों उंगलियों को जोड़ पुल जैसा बना लेते हैं। अक्सर आंखें बंद ध्यानस्थ हो जाते हैं, कुछ कहने से पहले सायास इस दुनिया में लौटते हैं। स्वर गायकों जैसा सधा हुआ, कोमल और मधुर, नाखून बढ़े हुए और उंगलियों के पोरों पर भी रंग, हथेलियां रूखी सूखी और हड़ीली। बातें करते समय हाथ और उंगलियां खूब चलाते हैं, जैसे शब्द न मिल रहे हों और इशारों से काम चलाना पड़ रहा हो। माथे पर लकीरें, आधा सिर गंजा, बचे खुचे झालर जैसे बाल आज गहरे काले रंग में रंगे थे। आज अर्थात स्थायी रूप से वो बाल नहीं रंगते, उनके चित्र बताते हैं कि अपने बालों को लेकर प्रचंड प्रयोग धर्मा है। कभी हिम धवल केश और दाढ़ी मूछे, कभी लोमहीन मुख, कभी केवल मूछ, कभी केवल दाढ़ी, कभी कभी सफेद झालर। अपनी छवि को लेकर वो अब तक अपना मानस नहीं बना पाए थे, इसलिए इनकी कोई स्थायी छवि नहीं है। हल्का नीला कुर्ता और काली पैंट, साधारणतया चश्मा नहीं लगाते। पता नहीं चित्र बनाते समय चश्मा लगाते हैं या नहीं। सुनहरी जंजीर से बंधा चश्मा छाती पर झूलता रहता है, हाथ में सिगरेट। आयु मुझे पता है, सबको पता है, वो मेरे पिता से भी 2 वर्ष बड़े हैं। हाँ, मेरे पिता का विवाह 22 वर्ष की आयु में हो गया था, 24 के थे जब मेरा जन्म हुआ। इन सब आंकड़ों की क्या जरूरत है? शायद यह कि मैंने उनके सामने बैठे बैठे उनके दुर्निवार आकर्षण को महसूस किया था। इस व्यक्ति में गजब की चुंबकीय शक्ति है। धीरे धीरे सड़क पर चलते हुए मैं यही सब सोच रही थी। अब एक बार फिर से मिलूं, गहरी अन्वेषक दृष्टि से देखूं, हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर लूं, कैसी विचित्र बात है, बिना स्पर्श के मेरा सौंदर्य बोध, उसका आस्वाद संपूर्ण नहीं होता। बहुत बुरा लगेगा यह तो। अगली मुलाकात ठीक 1 वर्ष 3 महीने और 5 दिन बाद संपन्न हुई, पर इस अंतराल में एक दिन के लिए भी उस चितेरे को भूल नहीं पाई। उनके और निकट जाने की अदम्य लालसा आलोड़ित करती रही। पृष्ठ 46। क्यों, क्या मुझे नहीं पता था उनका निजी जीवन कैसा है? कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, परिचितों से कैसा व्यवहार करते हैं? सब कुछ सार्वजनिक जानकारी है। पत्नी उन्हें झेल नहीं पाई, यूं प्रेम विवाह था। उनकी प्रतिभा को पहचानती थी नादिरा सिद्दीकी, यही कारण है वो स्वेच्छा से बरसों बरस गृहस्थी की गाड़ी खींचती रहीं, 2 बच्चियों को पालती रहीं, रिश्तेदारियां निभाती रहीं, लेकिन इस प्रसिद्ध चित्रकार की रंगरेलियां नहीं पचा पाईं। पहले सोचा अफवाहें हैं, फिर लगा काई जमे मार्ग पर चलने को अभिशप्त व्यक्ति की अनिवार्य पद स्खलन है। जब चित्र प्रदर्शनियों के उद्घाटन, गोष्ठी, सेमिनार इत्यादि में नित्य नूतन नवांगनाएं बगल में नजर आने लगीं, तो धीरे धीरे निष्पंद और निष्प्रिय होने लगी। बच्चियां तक बाप की निरंतर अनुपस्थिति को स्वीकार कर चुकी थीं, वो अपने विश्व प्रसिद्ध पिता का परिचय तक नहीं देती थीं। वर्ष दो वर्ष नवीन प्रेम प्रसंग उनका स्वभाव है, स्पष्ट स्वीकार करते हैं। 16-18 वर्षीय सुंदरियां उनकी सृजनात्मकता को उकसाए रखती हैं, उनमें नवीन ऊर्जा का संचार करती हैं। तो पहली पंक्ति है इस ऊर्जास्वित सुंदरियों की, दूसरी पंक्ति स्थायी प्रशंसिकाओं की है। प्रतिष्ठित धनी महिलाएं अधिकांशतः स्त्री पत्रकार, चित्रकला में छप छप करने वाली प्रदर्शनी आयोजिकाएं और समकालीन स्त्री चित्रकार। यहाँ तक नादिरा सिद्दीकी ने साथ निभाया। फिर आई नग्न चित्रों की बाढ़ और अवश्यंभावी नग्न मॉडल भी। यही मॉडल फलक से झर झर कर रियाज साहब के आसपास और बिस्तर में भी मिलने लगे। रियाज साहब को चित्र बनाते देखना भी सार्वजनिक उत्सव बन गया था। पेड़ के नीचे लेटी अर्ध या पूर्ण नग्न कन्या, चित्र बनाते रियाज साहब और ये सब देख सिसकारियां भरती भीड़। उनके ये नग्न मॉडल रातों रात प्रसिद्ध हो जाते थे और इस प्रसिद्धि के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को प्रयत्नशील, तत्पर व कर्मठ थे। पत्रकार इस सारे आयोजन को तूल दे चित्र सहित छापते बड़ा अजीब सा लगता था। उन्हें अपनी बच्चियों तक की शर्म न थी, जो इन नग्न मॉडल्स की ही समवयस्क थीं। ऐसे ही एक सचित्र समाचार ने नादिरा सिद्दीकी के सब्र का बांध तोड़ दिया। अगर नगमा और नजमा भी तुम्हारे दोस्तों के सामने न्यूड मॉडलिंग करें और वैसी ही जिंदगी जिएं जैसी तुम सलोनी और सुहानी के साथ बिता रहे हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम फन की इस बुलंदी का इस्तकबाल किन लफ्जों में करोगे? जनाब रियाजुद्दीन सिद्दीकी कुछ क्षण सर झुकाते सोचते रहे। कनिष्ठा के बड़े नाखून से बाकी नाखूनों के अंदर घुसा मैल निकालते रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ईमानदारी की बात है, बहुत बुरा लगेगा। उनसे कहोगे ऐसा मत करो? हाँ, तो फिर? मैं आम आदमी नहीं हूँ, आम जिंदगी की लुका छिपी नहीं निभा सकता। मैं जो करता हूँ खुलेआम करता हूँ, बंद दरवाजों के पीछे नहीं छुपता। इस ईमानदारी के लिए तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। कितने ही लोग हैं न जाने क्या क्या करते फिरते हैं, उनकी बीवियों को पता तक नहीं चलता। तो तुम जिंदगी की इस रवायत को सही मानते हो? बोलो, चुप क्यों हो? मैं कौन होता हूँ सही गलत का फैसला सुनाने वाला? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वे जवान हसीन लड़कियाँ मुझमें नया जोश और जिंदगी भर देती हैं। बिजली बदन में ही नहीं दिमाग में भी दौड़ जाती है। मैं ताज़ा दम हो फिर पेंट करने लगता हूँ। और मैं कोई अकेला तो नहीं, पिकासो का जिंदगी नामा पढ़कर देखो। नादिरा सिद्दीकी ने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसने घर, नौकरी और शहर बदल लिया। चुपचाप कानूनी कार्रवाई कर ये फिजूल का रिश्ता उतार फेंका। 3 साल बाद उसकी किताब छपी, बेनूर तस्वीर। अगर नादिरा सिद्दीकी ने यह किताब न लिखी होती तो किसी को भी उनकी आंतरिक कलहपूर्ण जीवन का पता ही न चलता। तो इस तरह के आदमी थे रियाज साहब। कैसे भी इंसान हो, चित्रकार महान है। मैं चित्र बनाती रही, यदा कदा प्रदर्शित करती रही। धीरे धीरे चित्रकला के क्षेत्र में मेरी घुसपैठ बढ़ती रही। अपनी फाइल लेकर मैं फिर उनके कला कक्ष में पहुंची। देखा, अजीब हड़बोंग मची है, जैसी रेलवे प्लेटफार्म पर होती है। लगा कभी कोई रेल आने वाली है, 1 मिनट रुकेगी। जैसे तैसे घुस जाओ वरना रेल छूट जाएगी। पता चला कोई राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी होने वाली है, उसके ही आयोजन में लगे हैं सब। क्या सेक्रेटरी, क्या चपरासी, रियाज साहब ने फाइल छोड़ जाने को कहा और तुरंत उठ खड़े हुए। मुझे भी हाथ जोड़कर सिर झुकाए वापिस आना पड़ा। प्रदर्शनी के उद्घाटन का निमंत्रण पत्र मुझे भी मिला। गई मैं, भीड़ का नामालूम सा हिस्सा। वो चित्रकार कितने सौभाग्यशाली हैं जो निरंतर उनके दाएं बाएं रहते हैं। यह देखा, उस लड़की के कंधे को बाएं भुजा से लपेटे कुछ समझा रहे हैं। एक नवागंतुक को बाहों में भर माथे पर चुंबन अंकित कर दिया। ये कौन है, यह तो सलोनी है, प्रसिद्ध मॉडल। इसकी तस्वीरें देखना मत भूलिएगा, रियाज साहब कह रहे थे। बहुत उम्मीदें बांध रखी हैं इससे। रंगों की दुनिया में ताज़ा हवा का झोंका है यह। फिर सलोनी का गाल चूमा, तुम जरूर कहीं पहुंचोगी, जरूर रियाज साहब के बिस्तर में। पीछे से कोई धीमी आवाज़ ने बोला, मुड़ कर देखा, कोई पत्रकार था। अब ये और कौन है जिससे इस तरह टूट कर गले मिल रहे हैं? पत्रकार टूटे पड़ रहे हैं, कैमरे बिजली गिरा रहे हैं। मुख्य अतिथि नामी जर्मन चित्रकार कोनरैड मिस्सिंग आए। फीता काटने से पहले अंग्रेजी में संक्षिप्त सा भाषण दिया, आधुनिक भारतीय चित्रकला और चित्रकारों में अपनी गहरी रुचि व्यक्त की। फीता कटा और भीड़ अंदर लपकी। सुखद आश्चर्य के प्रबल प्रहार से मैं जीवंत व्यक्ति निस्पंद निश्चल प्रतिमा सम जड़ हो गई। अवाक खड़ी सामने की दीवार देखती रही। प्रथम कक्ष में ही मेरा अपना चित्र प्रदर्शित था। पृष्ठ 47। अभूतपूर्व ढंग से प्रस्तुत किया गया था उसे। दाईं ओर जहां कोबाल्ट ब्लू की प्रचुरता थी, अल्ट्रा वायलेट ब्लू फ्रेम था। वेरेडियन ग्रीन के पास बाटल ग्रीन, पोस्ट ऑफिस रेड के पास पिंक और कैनरी येलो के पास क्रिमसन। इस तरह केवल फ्रेम बदल लेने से चित्र का संपूर्ण विन्यास और प्रभाव बदल गया था। लोग इस चित्र को गहरी दिलचस्पी से देख रहे थे। मैंने जाना वो क्यों महान चित्रकार हैं। रियाज साहब साधारण चित्र को अपनी परिकल्पना का सहारा दे असाधारण बना सकते थे, लड़खड़ाते चित्रकार को सशक्त बना सकते थे। रातों रात मैं प्रथम श्रेणी के चित्रकारों में गिनी जाने लगी। उत्साह से छलकती उनसे मिलने पहुंची, धन्यवाद ज्ञापन भी करना था। बड़ी भीड़ थी उनके कला कक्ष में, कई गणमान्य चित्रकार उपस्थित थे। उन्होंने सबसे मेरा परिचय करवाया, मेरे चित्र के संदर्भ में 2-4 वाक्य कहे। सबने मेरे चित्र की भूरी भूरी प्रशंसा की और फिर एक एक कर सब चले गए। कहिए कैसे आना हुआ, सिगरेट सुलगाते हुए रियाज साहब ने पूछा। यह अभी भला कोई पूछने की बात है, फिर भी यथाशक्य मैंने बात बनाते हुए कहा। जी मेरी फाइल आपके पास है। यह लो, फाइल धप्प से मेज पर पटक दी उन्होंने। ले जाओ इसे और आइंदा इस तरह की तस्वीरें बनाकर मुझे दिखाने मत आना। हुनर की फिजूल खर्ची कोई तुमसे सीखे। झटके से उठे और अंदर जाकर खटाक से दरवाजा बंद कर लिया। मैं जड़वत खड़ी रह गई। यह प्रशंसा थी, हाँ प्रशंसा ही थी, पर कितनी निर्मम, कितना क्रूर कठोर है यह व्यक्ति। अब मुझे क्या करना चाहिए? साधना, कठोर साधना, निरंतर साधना। कैसे चित्र बनाऊं मैं कि यही व्यक्ति कह उठे, वाह। 2 वर्ष बाद मिली उनसे। इधर उधर एकल प्रदर्शन होते रहे, नाम चलता रहा, पर राष्ट्रीय स्तर पर मेरा कोई निशान न था। मुझे देख अंतरंगता से मुस्कुराए। बैठो। तो बैठिए से बैठो पर आ गए हैं हम। वो चाय पी रहे थे, चुपचाप चाय पीते रहे और चित्र देखते रहे। कुछ चित्र दोबारा देखे। हाँ अब कुछ बात बनी। रंगों का मिजाज तुम्हारी पकड़ में आ रहा है, उनकी फितरत समझ में आ रही है। अपने दिल की बात रंगों की जुबानी कहना और ऐसे कहना कि देखने वाला भी समझे, यही तो असली बात है। रंग महज जरिया है, उनका सही इस्तेमाल ही असली बात है। एक रंग जो मेरे फलक पर बेजान सा दिखता है, तुम्हारे फलक पर खिल सकता है, हंस सकता है। मैं उनका एक एक शब्द पी रही थी, अचानक कुछ लोग आ गए। बात अधूरी रह गई। फिर सब लोग उठ खड़े हुए। फिक्की सभागार में किसी का भाषण सुनने की बात हुई। तुम भी चलो, ये फाइल यहीं छोड़ जाओ, फुर्सत से देखूंगा, उन्होंने आदेश दिया। 3 गाड़ियां थीं, किसी तरह ठुस ठुसा कर पहुंचे। फिक्की सभागार में वो उठ कर किसी और से मिलने चल दिए। भाषण सुना और सब लोग बाहर निकल गए। वो भूल ही गए कि मुझे साथ लेकर आए थे। मैं घबराई सी इधर उधर देख रही थी। कहिए कैसी हैं? ये मणि था। मणि मेरी ही तरह चित्रकार है, या शायद चित्रकार कहना गलत होगा। बात यह है कि वह रंगों का प्रयोग करता ही नहीं, वो रेखाओं का दीवाना है। उन्हें लेकर ही तरह तरह के प्रयोग करता है। उसके सारे चित्र रेखांकन के विविध प्रयोग हैं। आड़ी तिरछी, मोटी पतली और कभी छोटी छोटी रेखाओं का प्रयोग कर वो अद्भुत चित्र बना लेता है। कभी कभी एक ही रेखा से बने चित्र भी बनाता है, यानी एक बिंदु से रेखा आगे बढ़ी और मूर्ति घूमती, आगे पीछे लौटती, समग्र चित्र बनाती, प्रस्थान बिंदु तक लौट आती है। हाँ तो मणि ने मेरे हाल चाल पूछे और अपने साथी से परिचय करवाया। ए सनातन दास गुप्ता, आप तो जानती ही होंगी। जी हाँ, मैं सनातन से भी परिचित हूँ। बांस की खपच्चियों से बना आदमी, पक्का काला रंग और सूखी घास से बाल, आंखों पर गोल फ्रेम का चश्मा, बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल काठ का उल्लू लगता है। यही सनातन प्रसिद्ध चित्रकार है, अभिनव शैली है इसकी। ये फलक पर एक के बाद एक रंग पोतता चला जाता है। एक बार रंगों की आखिरी सतह लग जाने के बाद बिल्कुल रंग प्रयुक्त नहीं करता, धीरे धीरे उन्हीं रंगों को खुरच खुरच कर निकालता है। पतली तुलिका और पानी के सहारे उन्हें घोलता, मिलाता और फैलाता है। संपूर्ण चित्र का प्रभाव अवर्णनीय है। मणि और सनातन प्रयोगधर्मा अपरंपरावादी चित्रकार हैं। जब तक उनके चित्र न देखें, मेरी बात को संपूर्णता में समझना दुष्कर है। मणि की भवें प्रश्नवाचक मुद्रा में टंगी थी। मैं ओह, आप जरूर या साहब के साथ आई होंगी। और वो निकल गए। चलिए, आप हमारे साथ चलिए। वैसे आपको जाना कहाँ है? अशोक यात्री निवास, पृष्ठ 48। ठीक है, सनातन भी उधर ही जाएगा, आपको छोड़ देगा, पर पहले एक कप चाय। थोड़ी देर बाद हम फुटपाथ पर बनी चाय की गुमटी के सामने छोटी छोटी मुट्ठियों पर बैठे चाय की प्रतीक्षा कर रहे थे। बातें वही चित्रकला की, किसका चित्र लाखों में बिका, कौन भूखा मर रहा है, किसने अद्भुत प्रयोग किए हैं, कौन स्कॉलरशिप पर फ्रांस जा रहा है। उम्र का व्यवधान भूल हम उत्साही स्कूली छात्रों की तरह बतिया रहे थे। चाय पीकर चल पड़े। मणि के पास स्कूटर था, सनातन के पास सुर्ख लाल रंग की मारुति। मुझे अशोक यात्री निवास के सामने उतारते हुए बोला, अगली बार राजधानी आओ तो उससे जरूर संपर्क करूँ। यूं ही साथ बैठेंगे, गपशप करेंगे, खाना खाएंगे, घर घर। वो एक झटके में अंतर ध्यान हो गया। दूसरे दिन जनशताब्दी से अपने घोंसले की ओर उड़ चली। घर से निकलते ही अजीब सी घबराहट मुझे घेर लेती है। अब पता नहीं कब लौटना हो, लौटना हो भी या नहीं, और लौटूं तो ए घर ए नीरज कहीं न मिले तो। कभी कभी रुआसी हो उठती हूँ, रात में नीरज का स्पर्श चाहिए ही चाहिए। ओ, पास की खाट पर न हो तो मेरा सुरक्षा बोध लुप्त हो जाता है। एक बार लखनऊ में प्रदर्शनी थी, मैं और लवलीन एक ही कमरे में ठहरे थे और लवलीन ने कसकर झिड़क दिया था, बच्चों जैसी हरकतें मत करो, हवा की आवाज़ और पर्दे के हिलने से चौंकना, ये सब क्या है भाई। ओ जिद कर रही थी, दो चार दिन लखनऊ और रुके मजे मजे में, अपनी लय ताल से लखनऊ घूमेंगे। पर मेरा भय रूढ़ हो चला था, बस अब नहीं, अब मुझे नीरज चाहिए ही। मैं भी उस मिथकीय चरित्र जैसी हूँ जो धरती छूते ही नई ऊर्जा से भर जाता था। जितनी बार नीरज को छूती हूँ, नई ऊर्जा से भर उठती हूँ। अच्छे पति और बुरे विवाह से पीछा छुड़ाना बहुत कठिन है, लंबी सांस लेकर लवलीन ने कहा था। क्या कर रहा होगा नीरज, इतने दिन कैसे रहा होगा, मुझे याद करता होगा या नहीं। नीरज का नाम किसी मारवाड़ी बनिए जैसा होना चाहिए था, दमड़ी लाल, दिन रात अपने बही खातों में डूबा रहता है, 12-12 घंटे फैक्ट्री में मशीनों के बीच खड़ा रहता है, फिर भी यह निरीह व्यक्ति मुझे बेहद प्यारा है। इसका जीवन सरल रेखा की तरह है, एक बिंदु फैक्ट्री, दूसरा मैं। एक बार अचानक फैक्ट्री पहुंचकर मैंने कहा, चलो मैटनी शो देखते हैं, बड़ी अच्छी फिल्म है। वह एक क्षण भर को उद्विग्न हुआ, फिर बोला, अच्छा चलो। अपने असिस्टेंट मैनेजर को कुछ आदेश दिए और हम चल पड़े। ऐसे ही चलता है, कुछ इकाइयां सकर्मक क्रिया होती ही नहीं, वो सदा प्रतिक्रियात्मक होती हैं, अकर्मक। मैं अचानक कहती हूँ, मुझे 20 तारीख को दिल्ली जाना है, 4-5 दिन में लौट आऊंगी। वो नहीं पूछता क्यों, चुपचाप टिकट बनवा देता है। जब शादी की ही थी तब भी यही हाल था, वो अपने नन्हे से उद्योग को खड़ा करने में व्यस्त, मैं रंगों में डूबी हुई। कभी ललक कर कहा, उफ, मुंबई में मकबूल फिदा हुसैन की एकल प्रदर्शनी लग रही है, तो उसने तुरंत कहा, जाओ ना, देखाओ जाकर, और मुन्नू उसे मैं संभाल लूँगा, और सचमुच संभाला भी। ऐसी रंगीन आपातकालीन परिस्थितियों में उसने घर, बच्चे और फैक्ट्री तीनों को संभाला। क्या यही कारण है कि घर और फैक्ट्री दोनों अच्छी तरह चल रहे हैं? यानी मेरी प्रतिभा शून्य है। आम पति होता तो कहता, फेंको ये रंग वंग, घर संभालो। फिर उन बंधनों में कसमसाती मैं, और एक दिन काफ़ी में मिलाकर साइनाइड दे देती। जो कमबख्त रंगों की अहमियत न समझे, ऐसे पति का क्या अचार डालती। कैसा प्यार है यह, हर महीने कहीं उड़ जाने वाली पत्नी पर कभी कोई संशय नहीं। ढेर ढेर पत्र आते हैं, साथी चित्रकारों के, आयोजकों के, प्रशंसकों के। उसे जरा उत्सुकता नहीं होती यह जानने की कौन क्या लिख रहा है। मैं ही कोई रोचक पत्र पढ़कर सुना दूं तो ठीक, नहीं तो नहीं। फलक पर सफ़ेद कागज़ लगाने से संपूर्ण चित्र को आंकने और फ्रेम करवाने तक की पूरी प्रक्रिया को बहुत ध्यान से देखता है। इस कला की बारीकियों में गहरी पैठ है उसकी। मौने माने सेजा का घनघोर प्रशंसक है। पिकासो का, ला गुवर्निका छोड़ और कोई चित्र उसे नहीं जमा। सल्वाडोर डाली भी अच्छा लगता है, यानी विदेशी चित्रकारों पर ज़्यादा झुकाव है। कहता है उनके संघर्ष साधना, मौलिक दृष्टि और रंग संयोजन का जवाब नहीं। मेरी रंग यात्रा और उसकी उद्योग यात्रा समानांतर चलती है। बच्चों ने भी नीरे बचपन से इस तथ्य को सहजता से स्वीकार कर लिया कि दो भिन्न रुचि के व्यक्ति भी इतने प्यार से साथ साथ रह सकते हैं। बच्चे बड़े हुए, उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं और अब हम फिर से केवल दो हैं। मणि के रेखांकनों की तरह जीवन रेखा घूम घाम कर मूल बिंदु पर लौट आई है। अब प्यार का स्वरूप बदल रहा है। प्रेयसी पत्नी से मैं माँ की ओर बढ़ रही हूँ। निरंतर इस चुप्पे से आदमी का ध्यान रहता है, क्या खाया, कितना खाया, वक्त पर सोया या नहीं, ठीक से कपड़े पहने या नहीं। और अब वह भी पूछने लगा है, कब लौटोगी। इन दो शब्दों में कितनी आतुरता, कैसी प्रतीक्षा और कितना प्यार है, केवल मैं जानती हूँ। रात 11 बजे घर पहुंची। उफ, रात रानी की मादक गंध ने लगभग मदहोश ही कर दिया। कहीं से लौटूं और घर में फूल सजे मिले, उनकी खुशबू मुझे अपने में खींच ले तो घर लौटना सार्थक लगता है। ऑफिस में रोशनी थी, यानी नीरज जाग रहा है। अंदर जाकर देखा, कंप्यूटर पर काम चल रहा है। मैंने चुपचाप पीछे से जाकर हल्के से उसके कंधों पर हाथ रख दिया। आ गई। हाँ, कैसा रहा। अच्छा, बहुत अच्छा। खाना खा लिया। हाँ, मदन को जल्दी घर जाना था इसलिए जल्दी ही खा लिया। तुमने खाया। हाँ, ट्रेन में ही खा लिया था। आपने दवा ली। लूंगा, अभी लूंगा, सोने से पहले। पृष्ठ 49। तो चलो, अब इतनी रात गए तक जाग रहे हो, सुबह भी जल्दी उठ जाते हो। उठता हूँ, बस 5 मिनट। देखो, उठ जाना, मैं हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलती हूँ। इतनी देर में नहीं आए तो मैं आकर कंप्यूटर बंद कर दूंगी। शयन कक्ष में पहुँच कर देखा, नीरज आंखें मूंदे बिस्तर में लेटा था। दोनों हाथों से माथे की सलवटें कनपटी सहला रहा था। क्या बात है, सिर में दर्द है। नहीं, दर्द तो नहीं, थकान है जरा। इतनी मेहनत क्यों करते हो, 12-12 घंटे फैक्ट्री में खड़ा रहता है कोई। असिस्टेंट मैनेजर किस लिए हैं। वो भी खटता है बेचारा, सबको लगना पड़ता है। बाजार की हालत ही कुछ ऐसी है, जरा कहीं ढीले पड़े कि सब गया। अच्छा, अब सो जाओ, सफ़र की थकान होगी। मैं कुहनी के बल लेटी उसके बालों में उंगलियां चला रही थी। शुभ रात्रि कहते हुए झुक कर उसे चूम लिया। ये मेरा भ्रम है या सचमुच उसका वजन निरंतर कम हो रहा है। देह में हड्डियां ही हड्डियां दिखती हैं। देखो तो, कितने दुबले होते जा रहे हो। तुम्हारा भ्रम है, मेरा वजन स्थिर है। यूं भी मेरी लंबाई के लोग दुबले ही दिखते हैं। उसकी बाहों का कसाव बढ़ने लगा। हल्के से हंसा वो। अपना अपना नसीब है, तुम्हें मेरी हड्डियाँ चुभती हैं, मुझे तुम्हारी भरी भरी देह। छोड़ो भी, मुझे कोई हड्डियाँ वड्डियाँ नहीं चुभ रही। सच, कुछ नहीं चुभ रहा। फिर क्या बात है, उसने बिजली बुझा दी। तुम्हारे जैसे बोहेमियन को मांसाहार से क्यों परहेज हो, मजे में हड्डियाँ चिचोड़ो। धीमे से हंस के नीरज ने मुझे अपनी बाहों में कस लिया। परिचित देह के सुपरिचित रास्तों से होते हुए हम अपने जाने पहचाने गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे। यह वो रास्ता है जो आंखें बंद कर तय किया जा सकता है, घर का रास्ता। ये दरवाज़ा इसे हल्का सा दबाकर खोलें तो आवाज़ नहीं करता। ये मेरा अपना आंगन, मेरा आकाश। यहाँ पहुंचकर मैं पूरी कायनात की तरफ पीठ कर लेती हूँ। और कितनी मजबूत दीवारें हैं इस घर की, चारों ओर से मुझे घेरे, सुरक्षा का यह एहसास। मैं एक एक गलियारे को सहलाती हूँ। नहीं, कहीं कोई वर्जित अगम्य कक्ष नहीं, सब कुछ खुला खुलासा, मेरा अपना। कितना सुख, कैसी तृप्ति! अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहीं नहीं जाना है। क्या यही मोक्ष है? सब इच्छाओं का स्थगन या कहें स्खलन। दूसरे दिन गृहस्थी का फलक देखा, रंग संभाले और तुलिका उठा ली, बच्चों के पत्र। हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, घर की याद आती है, बगीचे की काट छांट, धोबी दूध वाले का हिसाब। शाम को टिकटी पर फलक लगा, नया सफेद कागज टांका, न जाने कितनी देर सब कुछ भूल, रेखांकन और फिर पृष्ठभूमि में लगी रही। जब दो कदम पीछे हट प्रभाव जानना चाहा, तो नीरज की बाहों में थी। कब से यूं चुपचाप खड़े हो, मुझे पता ही नहीं चला। रात की 10 बजे हैं। ओह, मैं रंगों के ढक्कन बंद किए ब्रश वगैरह साफ करना शुरू किया। तुम इन सब दीवारों पर आईना लगवा लो। क्यों? हाथ धोते धोते रुक गई मैं, ताकि देख सको चित्र बनाते समय कैसी लगती हो तुम। आमने सामने शीशे की दीवार, बहुत उलझन होगी, एक बार करके देखो तो सही। साल्वाडोर डाली ने किया था, ओ झेल सकता था इसलिए किया, मुझसे अपने ही अनगिनत रूप प्रतिरूप नहीं झेल पाएंगे। तो फिर एक ही दृश्य को विभिन्न रीतियों में आंको मौने की तरह। तुम हमेशा विदेशी चित्रकारों की नकल करने को क्यों कहते हो मुझे? नकल करने को कहाँ कह रहा हूँ, उसने चर्च आंके थे, तुम कुछ और आंको। मूलतः बात एक ही है, एक बात बताओ, एक से एक चित्रकार है हमारे यहाँ, तुम हमेशा मौने माने सेजा और रेणुआ को सराहते रहते हो। जो संघर्ष और साधना वहाँ है, जो मौलिक दृष्टि और रंग संयोजन है, वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ता। वो जुगनू, वो कगार तोड़ती उफनती बेचैनी, तुम्ही बताओ इस देश में ने कुछ कम भुगता है? पर ला गुवेर्निका के बराबर तो क्या निकट भी पहुँचा कुछ? तुम विभाजन और सांप्रदायिक दंगों को विश्व युद्ध के समकक्ष खड़ा कर रहे हो। पीड़ा का कोई आकार या मानक नहीं होता, बात संवेदनशीलता की है, अभिव्यक्त की है। हम चित्रों चित्रकारों पर बहस करते करते कब सो गए पता नहीं चला। लगभग सप्ताह भर बाद रियाज साहब का पत्र मिला, केवल 3 शब्द, फौरन चली आओ, नीचे उनके हस्ताक्षर, बस। लगा आकाश में उड़ रही हूँ। रियाज साहब का पत्र, मेरे नाम, ये तो बहुत संभाल कर रखना चाहिए। उन 3 शब्दों को शायद 20वीं बार पढ़ा, अचानक धरती पर आ गिरी। यह क्या है, मैंने नीरज से कहा, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, ट्रेन से और कैसे, बच्चे आने वाले हैं, कोई न कोई आता जाता रहेगा, तुमने जो मार्ग चुना है उसकी चुनौतियों के बारे में सोचो। लेकिन 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 क्या, अगर रंगों में ही तुम्हारा कल बसता है तो जाओ ढूंढो उसे, बेकार के बहाने मत बनाओ। पृष्ठ 50, चाहे उसमें मेरे आज के रंग खो जाएं, मैं कह रहा हूँ संभावना के द्वार बंद मत करो। दिल्ली पहुँचकर उनसे मिलने पहुँची। बैठो, इधर उधर कुछ ढूंढने लगे हो, हाँ यह रहा, एक कागज मेरी ओर बढ़ा दिया। नेशनल आर्ट गैलरी में मेरे चित्रों की एकल प्रदर्शनी का स्वीकृत पत्र था। मैं स्तब्ध, रक्त प्रवाह थम गया, सांस लेने में कठिनाई लगी, फिर जैसे बात तोड़ आवाज जल बह निकला हो, न जाने क्या सूझा मुझे। मैं अपनी कुर्सी से उठ उनके गले लग गई। वस्तुतः मेरे लिए वह अभूतपूर्व क्षण था, मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश कि उनसे गले मिलने का मन किया और मैंने यह काम कर डाला। थोड़ा संभल कर मैं वापिस अपनी कुर्सी पर बैठी। यह कैसे संभव हुआ, निश्चय ही उनके प्रयत्नों से, वरना दिल्ली में मुझे कौन जानता है। ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्या सचमुच मुझमें थोड़ी बहुत प्रतिभा है या स्त्री हूँ इसलिए। स्वयं को संयत कर कमरे पर नजर दौड़ाई तो देखा एक कोने में मड़ी खड़ा मोटी सी किताब के पन्ने पलट रहा था। भरपूर मुस्कुराकर उसने हाथ बढ़ाया, बधाई। मैंने हाथ तो मिला लिया पर उसकी मुस्कुराहट के विविध रंग बड़ी देर तक मानस पटल पर आते जाते रहे। फिर हम सब प्रदर्शनी की तैयारियों में जुट गए। जो लोग चित्र बनाने के लिए अभिशप्त हैं वो जानते हैं कि यह कला चित्र को मरने वाले कारीगर तक के हार्दिक सहयोग की मोहताज रहती है। अच्छा खासा चित्र मरने के दौरान बर्बाद हो सकता है, भले ही एकल प्रदर्शनी हो, मित्रों सहयोगियों की सहायता अत्यंत आवश्यक है। बहुत सफल रही प्रदर्शनी, राजधानी में झंडे गड़ गए। नीरज की बेहद याद आ रही थी। मैं दूसरे ही दिन लौट गई, घर लौटी तो देखा बच्ची और नीरज अतिरिक्त उत्साह से छलक रहे हैं। उन्होंने दूरदर्शन और समाचार पत्रों से प्रदर्शनी की सफलता के समाचार पढ़े थे। चौथे दिन मणि का पत्र मिला। पत्र क्या पुलिंदा था पूरा। समाचार पत्रों की कतरने, कला समीक्षकों के वक्तव्य और हाँ यह सूचना भी कि आगामी 5 तारीख को उसके रेखांकनों का एकल प्रदर्शन है, यानी फिर दिल्ली। दिल्ली पहुंचते ही पहले गुरुद्वारे मत्था टेकने। इसमें कोई संशय नहीं कि रियाज साहब मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे नए सिरे से चित्रकला सिखाई। एकल प्रदर्शनी की तैयारी के दौरान मुझे अमूल्य जानकारी दी। चित्र बनाने से लेकर उसे फ्रेम करवाने और प्रदर्शित करने तक। इतना भर नहीं, अवसर और अवकाश मिलते ही वे चित्रकला संबंधी गूढ़ जानकारियां दुर्लभ दिशा निर्देश देते रहते हैं। अतः उनके कला पक्ष को गुरुद्वारा मान मत्था टेकने पहुंची। इस बार मणि की प्रदर्शनी को लेकर भाग दौड़ मची हुई थी। मुझे देखते ही बोले, तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है, जरा इन तस्वीरों का ब्रोशर बना डालो। सिर झुकाए हम सब अपने अपने काम में जुट गए। आज मैं उनकी कार्य क्षमता देख दंग रह गई। 72 साल का यह चित्रकार किसी 17 साल के युवा से कम न था, न काम में न काम के प्रति उत्साह में। लगभग 2 बजे के करीब सब लोग चले गए खाना खाने और बाहर के काम निपटाने। रियाज साहब ने पास के ढाबे से खाना मंगवा लिया। अजीब बात है, मैं सामने बैठी थी और वो मेरी उपस्थिति नकार तन्मयता से अंगुलियां चाट चाट छोले भटूरे खाते रहे। खाना खा, पानी पी, तृप्ति की डकार ली, डिबिया निकाल जर्दा फांका और तब मेरी ओर मुड़े। चलो अंदर चलकर बैठते हैं, बहुत थक गया हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। पर्दा उठाकर या साहब अंदर वाले कमरे में चले गए। मैंने न कभी किसी को इस कमरे में जाते देखा न आते। यह उनका नितांत निजी कक्ष था। हाँ, उन पर लिखे गए अनेकानेक लेखों में उनके इस निजी कक्ष के अनेक चित्र अवश्य देखे थे। खूब बड़ा सा कमरा, तारपीन के तेल की मीठी सी महक, दीवारों पर सॉफ्ट वोड लगा था। बने अधबने कई चित्र टके थे। अलमारियों में रंग के डिब्बे, ट्यूब और तरह तरह के ब्रश। एक अलमारी में किताबें और कागज, एक कोने में फलक सहित लकड़ी का तिकोन, ठीक सामने लकड़ी का तख्त, उस पर अस्त व्यस्त बिस्तर और उतारे गए कपड़े। इसी कमरे के दूसरे कोने में एक मेज पर चाय बनाने का सामान और गैस का चूल्हा। उन्होंने बैठने को कहा। बैठें कहाँ? कपड़े हटाने लगी तो सिगरेट के टोंटों से भरी एश्ट्रे प्रकट हुई। किसी तरह जगह बनाकर बैठ गई। उन्होंने कुर्ते की जेब से सिगरेट निकाली, लाइटर से सुलगा, किताबों की अलमारी में कुछ ढूंढने लगे। रेनेसा के चित्रकारों पर एक पुस्तक निकाली और खिड़की के पास खड़े होकर उसमें कुछ देखने लगे। पृष्ठ 51। अचानक पुस्तक बंद कर बिस्तर पर आकर लेट गए। मैं सकपका कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने लेट कर फिर पुस्तक खोल ली। एक किताब पढ़ना, कभी जरूर पढ़ना। हाँ, और उनकी आंखें मुद गईं, शिथिल हाथों से पुस्तक लुढ़क गई, सिगरेट सुलग रही थी और वो आंखें मुदे लेटे थे। 1 मिनट 2 मिनट लगा सो गए हैं। अब मैं क्या करूं, इन्हें जगाऊं या चुपचाप खिसक लूं? मैंने दूसरा विकल्प चुना। पुस्तक बंद कर उनके सिरहाने रख दी, उनकी उंगलियों से सिगरेट निकालकर बुझाई, अपना पर्स उठाया और दबे पांव बाहर निकल आई। पूरा सप्ताह प्रदर्शन की तैयारी और फिर उद्घाटन में निकल गया। घर जाने से पहले फिर पहुंची मत्था टेकने। उन्हें पिछली मुलाकात के बारे में कुछ याद न था। याद रखने लायक ऐसी कोई असाधारण बात भी नहीं थी। मेरे जैसा अनगिनत चित्रकार उनके परिचय के दायरे में है। विदा लिए बिना चुपचाप चले जाने का अपराध बोध तिरोहित हो गया। पुस्तक बंद कर उनके सिरहाने रख दी। अचानक आधी की तरह एक लड़की कमरे में घुसी। आम सॉरी, देर हो गई, रास्ते में ट्रैफिक जाम। बेकार की बातों में वक्त मत बर्बाद करो, चलो अब पूरा करते हैं। फिर मुझसे बोले, तुम भी आओ, सीखो लाइव मॉडल से तस्वीर कैसे बनती है, बड़ा जोखिम है इसमें। न जाने कब से इस अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी मैं। उस महान चित्रकार को चित्र बनाते देखना अभूतपूर्व अविस्मरणीय अनुभव होगा। रियाज साहब झटके से उठे और अंदर चले गए। उस लड़की ने मुझे देखा, मुस्कुराए या न मुस्कुराए कुछ निश्चय नहीं कर पाई। फिर हाथ बढ़ाकर बोली, सारा चटर्जी मॉडल हूँ। मैंने हाथ मिलाया, अपना नाम बताया। दो परिचितों की तरह हम अंदर घुसे। फलक पर नया कागज था, काफी बड़ा आयताकार। मूल मूल रेखांकन और पृष्ठभूमि का विभाजन हो चुका था। अब रेखांकन के कोण, वृत्त और आयतों पर काम होना था। आज वहाँ एक स्टूल भी था और खिड़की के पास आदमकद शीशा भी। लड़की सीधे बिस्तर की ओर बढ़ी, अपना पर्स रखा और निशब्द वस्त्र उतारने लगी। मेरी सांस रुकने लगी। यह क्या हो रहा है? फिर मैंने स्वयं को संयत किया। अगर इस लड़की की जगह कोई वृक्ष हो तो पलाश का वृक्ष, ढेर सारे लाल लाल पुष्प गुच्छों से लदा, अपनी संपदा का भार स्वयं संभालने में असमर्थ, कुछ झुका झुका सा। रिया साहब ने उसे खिड़की के पास आदमकद शीशे के सामने खड़ा कर दिया। पूर्णतया निर्वसन वह लड़की खिड़की के पास खड़ी थी और दर्पण में अपनी छवि देख पुलकित थी। पर्दे से छन छन कर आता हल्का सा प्रकाश उसकी देह यष्टि को अद्भुत चमक प्रदान कर रहा था। बाकी कमरे में अंधेरा था। कियारो स्क्यूरो छाया प्रकाश श्वेत श्याम शैली में चित्रांकन में व्यस्त हो गए रियाज साहब। मैं स्टूल पर बैठ गई। लड़की बिना हिले डुले वैसे ही खड़ी रही जैसे रियाज साहब ने उसे खड़ा किया था। फलक पर से रेखाएं, कोण, आयत और वृत्त अदृश्य होने लगे और उस आत्म मुग्ध सुंदरी का चित्र उभरने लगा। थोड़ी तिरछी खड़ी लड़की की पीठ दर्शकों की ओर थी और सामने दर्पण में उसका आत्म मुग्ध प्रतिबिंब दिख रहा था। इस तरह यथार्थ और प्रतिच्छवि को मिलाकर चित्र संपूर्णता की ओर बढ़ रहा था। इसी तरह न जाने कितना समय निकल गया। मैं चुपचाप खड़ी उस महान चित्रकार को चित्र बनाते देख रही थी। रियाज साहब चारकोल पेंसिल उठाएंगे या रंगों का प्रयोग करेंगे? चारकोल आसान है, रंग माध्यम से त्वचा का अंकन अत्यंत दुष्कर। इस चित्र की आन प्रकाश और छाया का सम्मिलन है, रंग या चारकोल। मैं इसी उलझन में थी कि अचानक रियाज साहब किलक उठे। बहुत बढ़िया सारा, बहुत बढ़िया। उन्होंने पेंसिल वगैरह रख दी। फिर जो हुआ अप्रत्याशित था। लगभग झपट कर उन्होंने सारा को अपनी बाहों में भर लिया और बिस्तर पर लुढ़क गए। नन्ही बच्ची की तरह आह्लादित सारा उनके प्रगाढ़ आलिंगन का उत्तर अपने चुंबनों से देने लगी। कांपते पैरों से मैं बाहर आई। मेज का सहारा ले कुर्सी के हत्थे तक पहुंची और सायास कुर्सी पर बैठी। अब भी मेरा सर्वांग कांप रहा था। अंदर झंझावात अपने बेग से न जाने क्या क्या ध्वंस किए डाल रहा था। यह क्या हो रहा है? वही जो मैंने सुना और पढ़ा था, आज प्रत्यक्ष देख लिया। फिर भी कला साधना की यह परिणति समझ नहीं पा रही थी। इसमें समझने को है क्या? वो चित्रकार और मॉडल होने के साथ साथ स्त्री पुरुष भी तो हैं। जो कुछ भीतर चल रहा है दो वयस्कों की आपसी सहमत से हो रहा है, उसमें तीसरे की अनुशंसा का कोई स्थान नहीं। झंझावात मेरे अंदर भी उतर गया। क्या ऐसी अपेक्षा अपनी हर परिचित स्त्री से रखते हैं रिया साहब? मुझसे भी? नहीं नहीं, मुझसे क्यों रखेंगे? न मैं 17 साल की हूँ, न अपूर्व सुंदरी कलात्मक ऊर्जा के लिए दिव्य प्रेरणा का स्रोत 20-22 तक की सुंदरियों की देह से ही झरता है। मुझे क्या बुरा लग रहा है और क्यों बुरा लग रहा है? फिर भी अपने अनुभव को अच्छा या बुरा शीर्षक देने का अधिकार तो मुझे है। यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा। एक बूढ़े आदमी का उस बच्ची की सी लड़की पर यूं झपट पड़ना कुछ कुछ बलात्कार जैसा लगा। बलात्कार तो नहीं था, लड़की सक्रिय सहयोगिनी थी। सांचे में ढली देह यष्टि की स्वामिनी सहज सुंदरी सारा कैसे उस बूढ़े को सहन कर रही थी? गंजा सिर, नकली दांत, झूलती खाल और ढीली देह। रियाज साहब लाख कलाबाजी दिखाएं, सारा की टक्कर के खिलाड़ी तो हो नहीं सकते। अब समझ में आया, हेमिंग्वे को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? वृद्धावस्था की विवशताएं स्वीकार नहीं कर पाया, तब बियाग्रा बाजार में नहीं उतरी थी। और सारा क्या विवशता है उसकी? पर्दा उठाकर सारा बाहर आई और तेजी से बाहर निकल गई। चेहरे पर क्या था? गहरी ऊब, झुंझलाहट। निश्चय ही तृप्ति और संतोष वहां नहीं था। पृष्ठ 52। हाँपते हाँपते रिया साहब बाहर आए। बड़ी मौज में थे, कुछ गुनगुना रहे थे। अरे तुम अभी तक यहीं हो? मैंने तो सोचा था डर के मारे भाग खड़ी होगी। जो भाव मन में जागा वह डर नहीं था। आप नहीं डरते? प्रकटतः कहा। सिगरेट सुलगाते सुलगाते थम गए रियाज साहब। मैं क्यों डरूंगा? जलती तीली उंगलियां झुलसाने लगी तो फेंक दी। इस सत्य कि ये चलते फिरते दैहिक संबंध एक तरह की व्याधि है। स्त्री पुरुष किसी को भी हो सकती है, अधिकतर पुरुषों को होती है, जैसे हीमोफीलिया। उन्होंने सिगरेट की राख झाड़ी, गहरा कश ले, धुआं उगला, फिर पीछे कुर्सी से टिका आहिस्ता से बोले, वाह, ब्रश ही नहीं जुबान भी चला लेती हो। फिर गहरा कश, धुएं का गुब्बार। किसी भी फनकार को अपने फन में महारत हासिल करने के लिए खुद को आजाद छोड़ देना चाहिए। जो फनकार जिंदगी से और जिंदगी के साथ जितने तजुर्बे करेगा, उसकी निगाह उतनी ही पैनी होगी। हाथ बारीक, परवाज बुलंद। यह बात गले नहीं उतरती सर। आजाद जिंदगी और तजुर्बे का अर्थ केवल ये दैहिक संबंध ही क्यों हो? और इन अर्थों में आज़ादी भोगने वाले लोग हर जगह हर तबके में मिल जाते हैं। मेरा धोबी है और उसका दोस्त नाई है, आए दिन इन्हीं चक्करों में पिटते कुटते हैं, मगर उनकी कला या कला के प्रति समर्पण में कोई सुधार मैंने नहीं देखा। ए क्या क्या बात हुई? वो जाग से पड़े, आगे झुकाए, लगा नाराज हो गए हैं। जो आप कह रहे हैं ठोस तर्क नहीं, बहाना है स्वयं को सही सिद्ध करने का। उन्होंने ध्यान से मुझे देखा। बड़ा अफसोस है तुम मुझे इतनी देर से मिली, वरना तुम्हें भी खींच लेता। हंसी आ गई। इन्हें नहीं मालूम इनका यह जुमला जो ये हर तीसरी लड़की पर फेंकते हैं चुटकुला बन चुका है। खींच लेने से हर औरत खींची चली जाती है। कुछ और भी तो घट सकता है, जैसे मेरी जड़ें बहुत मजबूत हैं, उल्टे आप ही औंधे मुंह गिर पड़ते। फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है? तुम्हें पता नहीं जो औरत मेरे साथ सोई फिर किसी मर्द के साथ खुश नहीं रह सकी। डट के मुर्गे उड़ाता हूँ और डट के। बस बस, कहीं आपके समझने में भूल हुई है या मुझसे समझाने में? शिकारी तो कांटा फेंकेगा ही, मछली फंसे तो बढ़िया, नहीं फंसे तो फिर फेंकेगा। कब तक फेंकते रहेंगे कांटा? और पिराना फंस गई तो कांटे के साथ साथ आपको भी कुतर जाएगी, तुम नहीं समझोगी। इससे पहले तुम औरत हो, नहीं जोड़ा आपने? जैसे अपने आप से ही बात कर रही हूं, इस तरह कहा। एक व्यक्ति है जो मेरी मज्जा तक में घुल गया है, दो मिलकर एक हो गए। इस एकात्म की तृप्ति को समझाना संभव नहीं। गूंगा गुड़ का स्वाद कैसे बताए? यूं समझनी समझिए, जो सदा सदा का शाकाहारी हो, तंदूरी मुर्ग हो या कोई और नियामत, उसकी लार ग्रंथियां सक्रिय नहीं होंगी। औरतों की यही बात मुझे पसंद नहीं, खुद को जमाने भर का पारसा साबित करने में लगी रहती हैं। बात औरत मर्द की नहीं, आदम जात की है। देखिए, तीन तरह के लोग होते हैं, एक ताला लगा हो या नहीं वो चोरी नहीं करते, इस बारे में सोचते तक नहीं। दूसरे, ताला लगा हो तो आगे चल देंगे, नहीं लगा हो तो मौका नहीं छोड़ेंगे। और तीसरे, ताला लगा हो न लगा हो वो किस्मत जरूर आजमाएंगे, जो भी हो यह उनका स्वभाव है। मैं तीसरी कैटेगरी में हूँ। निर्णय करने वाली मैं कौन होती हूँ? मैं केवल इतना कह रही हूँ, अपने और अपने ही जैसे 2, 4, 10, 50, 100, 200 लोगों के अनुभवों के आधार पर कोई सिद्धांत कैसे प्रतिपादित किया जा सकता है? इसके ठीक विपरीत ध्रुव पर भी काफी लोग खड़े हैं। कुछ लोग हैं स्त्री पुरुष दोनों ही अविवाहित हैं, या साथी से अलग हो गए, कोई भी कारण हो, मृत्यु या तलाक दो चार होते हैं जो बाकी जीवन ऐसे ही अकेले काट देते हैं। उनके मन में कोई कटुता भी नहीं, न बिछड़े साथी के प्रति कोई दुर्भावना या अपशब्द विलाप तक नहीं। कुछ हो भी तो वह इतना निजी और गोपन है कि उसकी छाया तक उनके सृजन और सार्वजनिक जीवन पर नहीं पड़ती। जो भी हो यह उनका चयन है और चयन का अधिकार सबको है। तो यही कि चारा फेंकते रहिए, मगर जान लीजिए हर मछली चारा नहीं कुतरती। क्या कहीं मेरे मन में नादिरा सिद्दीकी की छवि थी? कितनी शालीनता से जीवन काटा उन्होंने, अगर शालीनता और संस्कारों का ओढ़ा हुआ मुखौटा भी कहें तो मुखौटा सुंदर है, आकर्षक है, मुझे यह कहने का अधिकार क्यों नहीं है? रियाज साहब, चौंक कर देखा उन्होंने, मैंने कभी उन्हें उनके नाम से नहीं पुकारा था। इस खेल को उलट दें तो, यानी गृहस्थी में निपुणता लाने के लिए आखिर वह भी एक कला ही है। हर पत्नी पति के सामने या पीठ पीछे 19-20 साल के लड़कों को बुलाने लगे, उनसे काम कला के गुर खिरने लगे तो कैसा लगेगा? क्या कहेंगे आप? अनजाने में ही रियाज साहब ने बेजारी से सिर हिलाया, जैसे कह रहे हों क्या हिमाकत है, भला यह कैसे हो सकता है? मगर जो वो बोले कुछ और था। हाँ हाँ क्यों नहीं, भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है, चाहती तो औरतें भी यही हैं, मगर डरती हैं शौहर से, जमाने से, खुद से। ठीक कहा आपने, चाहती वो कुछ और हैं। छोटा और सरल समझ यह रास्ता चुन लेती हैं, एक बार चयन कर लिया तो रास्ते की असुविधाएं झेलनी ही पड़ती हैं। पृष्ठ 53। ओहो क्या कहने, आपने खासा मुश्किल रास्ता पकड़ा है, वाकई आप तो आला दर्जे की फनकार निकली। होलियर देन दाओ, जो भी कहें, और मैं अकेली कहाँ हूं, बहुत लोग हैं, आप ही बताइए, नादिरा सिद्दीकी को खींच सकता है कोई? वो तो अब बूढ़ी हो चली। और आप खासे कड़ियल जवान हैं, क्यों? अनायास मुंह से फिसल गया। बात तेजी से गाली गलौज में बदल रही थी, अब मुझे चल देना चाहिए। अच्छा सर, आज्ञा दीजिए, अब चलती हूँ। सदा की तरह रियाज साहब ने हाथ मिलाया, पर इस बार हाथ छोड़ा नहीं। पता ही नहीं क्यों आज तुम्हारा हाथ छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। तू मत छोड़िए, मैंने कब कहा आप मेरा हाथ छोड़ दें। ऑफिस के बाहर तक हम यूं ही हाथ बांधे आए, इस तरह चलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। उन्होंने स्वयं ही मेरा हाथ छोड़ दिया और अंदर चले गए। भीतर बैठी स्त्री मुस्कुरा दी, बाहर आकर देखा सांझ गहराने लगी थी। ये सब उलट पुलट कैसे हो गया? महान चित्रकार के लिए मेरे मन में गंजा बूढ़ा जैसे शब्द क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्या हुआ था जो मुझे पहले से पता न था? और उनके निजी जीवन पर कोई टिप्पणी करने का मुझे क्या अधिकार है? फिर भी कहीं कुछ है जो बहुत खराब लग रहा है। गिरते गिरते बची मैं, बड़े से पत्थर से टकरा गई थी। ओ ये अंधेरा क्यों है? बिजली नहीं आ रही शायद। क्या सब पुरुष ऐसे ही होते हैं? नीरज नहीं, असंभव, सफल उद्योगपति है, फैक्ट्री में 20 से 25 तक की लड़कियां भी हैं। फिर नीरज क्यों कभी इधर उधर नहीं ताकता? ताकेगा तो क्या, कोई उस पर टूट भी पड़े तो अवसर का लाभ उठाने की जगह स्वयं को घोर अपमानित मानेगा। और मड़ी सनातन दास गुप्ता, और भी न जाने कितने साथी चित्रकार हैं, साथ साथ काम करते हुए स्त्री पुरुष का बोध लुप्त हो जाता है, रह जाती है सहकर्मियों के बीच पनपी समझदारी, संवेदना। व्यक्तिगत रुचि अरुचि को सार्विक प्रतिमान कैसे बनाया जा सकता है? और यार साहब, ये सब क्या गोरख धंधा है, कब तक चलेगा यह सब? एक दिन अकेले इसी गंदे अव्यवस्थित कक्ष में पड़े होंगे, लोग आएंगे, औपचारिक बातें करेंगे, चले जाएंगे, कोई प्यार से सिर सहलाने वाला न होगा। क्या कभी नादिरा सिद्दीकी की याद नहीं आती? नहीं लगता कि बड़ी भारी भूल हो गई। उनकी उपस्थिति, उनके स्पर्श के लिए नहीं तरसती इनकी आंखें, शायद नहीं, वहां तो कमसिन सुंदर लड़कियां बसी हैं। क्या आखिरी सांस लेते समय भी नादिरा नादिरा नहीं पुकारेंगे? कोई भी हो पास, नर्स या मॉडल, कोई अंतर नहीं पड़ता। शायद नहीं, उनकी सारी व्यवस्थाएं फौरी हैं, काम चलाऊं, जीवन की कोई लंबी और स्थायी व्यवस्था उनके पास है ही नहीं। व्यवस्था यही है केंद्र बिंदु, कहीं रियाज साहब और मैं इस एक शब्द की नदी के दो किनारों पर तो नहीं खड़े? वो नदी में कूद लहरें झेल रहे हैं, मैं किनारे खड़ी कूदने वालों के दुस्साहस पर विस्मित हूँ। लहरें तो लहरें हैं, किनारे भी पटक सकती हैं, डुबा भी सकती हैं। जिसे मैं झेलना कह रही हूँ वो उसे मजा लेना कह सकते हैं। अचानक सब दुकानें एक साथ जगमगा उठीं, बिजली आ गई, मैंने घड़ी देखी, मेरी ट्रेन का समय हो गया, झटपट होटल पहुंची, सामान उठाया और सीधे स्टेशन भागी। इस बार ऊपर की शायिका मिली थी, ऊपर लेटी आराम से अपने विचारों को सुलझाती रहूंगी, नीचे खटर पटर हो रही थी, दो स्त्रियां और एक पुरुष। सामान ढंग से रख गया, पानी की बोतल इधर, वो मिठाई का डिब्बा उधर। कुछ देर यही चलता रहा, फिर सब शांत, तो दोनों स्त्रियां आपस में बात करने लगीं। मैंने प्रयत्न किया छूट गए विचारों को फिर से समेट कोई सूत्र ढूंढ लूं, धागे की तरह लपेट लूं, व्यवस्थित कर लूं। नीचे भी व्यवस्था की गड़बड़ चल रही थी। मेरा बैग कहाँ गया? कौन सा बैग? लाल वाला, वो तुमने खुद ही पीछे वाली खूंटी पर टांगा था। अरे हाँ ये रहा, अच्छा शुरू करो। 1 मिनट 1 निट 2 पर्ल, WOF KT, KT अगैन WOF 2 पर्ल 1 निट। ये क्या शुरू हो गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। झुक कर नीचे देखा, एक स्त्री किसी पत्रिका में देख देख कर 1 निट 2 वर्ल बोल रही थी, दूसरी खटाखट ऊन सलाइयाँ चला रही थी। तो ये बुनाई का कोई नमूना है, एक सीधा दो उल्टे। मुझे झांकता देख वो दोनों मुस्कुरा दीं, जैसे कोई रहस्य हो हमारे बीच, वो जानती हैं। और मैंने देखा स्वेटर पर जालीदार मछलियाँ सिवरती जा रही हैं, बड़ा सुंदर डिजाइन है। मैंने मुस्कान के उत्तर में कहा, बहुत कठिन लगता है। कठिन है ना? हाँ, देखने में तो हर नमूना ऐसा ही लगता है, पर जिन्हें शौक होता है वो नज़र भर देख कर कोई भी नमूना डाल लेते हैं। इसमें मुश्किल क्या है? दूसरी स्त्री बोली, है तो वही दो घर, सीधा और उल्टा, वही घटाओ बढ़ाओ, बल देकर बुनो और हो गया। हर नमूना इसी तरह बनता है। हाँ ठीक तो है, हर नमूना इसी तरह बनता है।